ओम शांति। सोने की दुनिया होगी और खाने के छप्पन भोग। खाने की चीज जरूरी है ना, तो आज की मुरली में बहुत सारी बातें हैं। बाबा ने स्वर्ग का साक्षात्कार कराया हम सबको, और स्वर्ग का संपूर्ण सुख कौन प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे, उसकी हमको निशानियां बताई, उन पर उनकी संगम में ऊपर क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, और दूसरा सेवादारियों की विशेषताएं, सेवादारी अर्थात क्या, और कुमारियों के बारे में बाबा ने बहुत सारे भाग्य का वर्णन किया उनका। और ये मिलन मेला जो था 30 जनवरी 1985, इस मिलन मेले का महत्व बताया, और विदाई के समय बाबा ने क्या कहा। हाँ, तो सबसे पहले ये बताओ कि सफलता निश्चित मिलेगी किसको? जो दिल से, तन से और आपसी प्यार से सेवा करेंगे तो क्या होगा, सफलता निश्चित मिलेगी। तो ये है सफलता के सूत्र हैं, क्योंकि सफलता जब हम सेवा क्षेत्र पर जाते हैं तो बहुत सारी जरूरत चीजों की जरूरत पड़ती है। वहां दिल से, मन से, तन से, पूरा सच्चे दिल से, एक समर्पण भाव से अगर हम सेवा करते हैं तो सफलता सुनिश्चित होती है। अगर कहीं ना कहीं उस सेवा में हमारा स्वार्थ है, मान शान है, तो सफलता नहीं मिलती है। अगर मिलेगी भी तो वो अल्पकाल की होगी, और उस सफलता में संतुष्टता नहीं होती है। मान शान मिलेगा, बाबा होगी, लेकिन संतुष्टता जो एक आंतरिक मन की खुशी होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं सच्चे दिल से, तन से, मन से और आपसी प्यार से, क्योंकि संगठन में ही हमारे संस्कारों का पता चलता है। संस्कारों का परिवर्तन संगठन में ही संभव होता है, नहीं तो अगर हम अकेले रहते हैं तो संस्कार इतना सहज रूप से परिवर्तन नहीं होते हैं। संगठन में बहुत सारी जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनकी विशेषताओं को देखकर स्वयं को परिवर्तन करने का संकल्प आता है कि हमारे में भी होना चाहिए, ऑलराउंडर पार्टधारी कहीं भी एडजस्ट हो जाएं। तो जो सेवाएं हैं ना, ये एक बहुत बड़ा दुआओं का साधन है। ये रॉकेट है, रॉकेट की तरह तीखा, माना बहुत जल्दी हमारे जीवन में ये दुआएं भर देती है सेवा, क्योंकि ये सेवा किसी मनुष्य की नहीं है, भगवान की सेवा, और ये विश्व को परिवर्तन करने की सेवा है। ये सेवा का चांस केवल सारे क्लब में हमको अभी मिलता है। तो ये सौभाग्य है कि हम सब का जो जीवन है भगवान की सेवा में लग रहा है। भगवान की यज्ञ में हड्डियां स्वाहा करने का एक गोल्डन डायमंड चांस मिला है, तो ये चांस हमारे हाथों से निकल नहीं जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की सेवा मिलती है, चाहे कोई भी है, देखने में छोटी बड़ी होती है, लेकिन वास्तव में सेवा जो है, सेवा से मनुष्य महान बनता है, कर्मों से महान बनता है। तो सेवा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम मन से सेवा करते हैं, बाबा कहते हैं अगर तन ठीक नहीं है तो मन से सेवा ठीक करो, मन से करो, नहीं तो धन से सेवा करो, समन संपर्क से करो। ये भी नहीं होता है तो किसी को हम उमंग उत्साह दिलाते हैं, ये भी एक सेवा है। तो सेवा हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोचते हुए भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की स्लोगन की बाबा ने, कि हम सबको सफलता निश्चित कैसे मिलेगी। एक तो आपसी प्यार, तो हमको ये भी देखना है कि अगर हमारा आपसी प्यार नहीं है तो मन मुटाव क्यों है, क्यों हमारी आपस में दूरियां अभी भी बनी हुई हैं, उनके क्या कारण है। तो उसमें हमारा अहंकार हो सकता है, नम्रता की कमी है। नम्रता है तो दूरियां अपने आप खत्म हो जाती है, लेकिन आत्मा केंद्रित ने संस्कार है कि झुकती नहीं है सहज रूप से। स्वयं के संस्कार जो हैं बड़े पक्के हो गए, तो इसलिए फिर सफलता में दूरियां बन जाती, रिश्तों में दूरियां बन जाती हैं। तो आपसी प्यार बहुत जरूरी है, रूहानी प्यार, जिस प्यार में रूहानियत समाई हो, जिस प्यार में एक दो का कल्याण समाया हो, जिस प्यार में एक दो को आगे बढ़ाने की भावनाएं समाई हुई हो, तो ये हमारे में बहुत होना चाहिए। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि संतुष्ट कौन रह सकते हैं, आज के मुरली में था ये, सफलता निश्चित मिलेगी तो लास्ट में था, जल्दी पकड़ में आ गया। संतुष्ट कौन रह सकता है, तो वरदान में था वो, हाँ वो था कि जो आत्मिक शक्ति से भरपूर है, उसकी बहुत सारी निशानियां बताई बाबा ने आज। जो आत्मिक, बाबा ने कहा इस संगम युग पर ये प्रकृति का शरीर और आत्मा दोनों तंदुरुस्त होना आवश्यक है, तो आत्मिक शक्ति जो है, आत्मिक शक्ति से बहुत फायदा बताया बाबा ने। बाबा ने कहा अगर आत्मिक शक्ति है तो आत्मिक शक्ति से तंदुरुस्त रहेंगे, तन मन से तंदुरुस्त रहेंगे। दूसरा, अगर कोई भी बीमारी आती है, कर्म भोग आता है, तो उसका वर्णन नहीं करेंगे, कर्म भोग को कर्म योग में वर्णन कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। तीसरा, कोई भी बीमारी आती है, परिस्थिति आती है, तो वो सूली से कांटा बन जाएगी, बड़ी चीज से छोटी हो जाएगी। और चौथा, कोई भी कष्ट आता है तो वो कष्ट को वो संतुष्टता में परिवर्तन कर देंगे, स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। तो ये था कि अगर आत्मिक शक्ति है तो रोज हम जो योग लगाते हैं तो स्वयं में इतनी शक्ति भरनी है कि ये चीजें स्वतः होने लगे, उनकी हमको समय पर याद ना करना पड़े कि इसके लिए बाबा ने ये कहा हुआ है, ये कहा हुआ है। हाँ, लंबे समय से पहले तो याद रखना ही पड़ेगा ताकि वो धीरे धीरे हमारे अंदर स्वतः समाता जाए, समय पर स्वतः याद आए, याद कराने की जरूरत ना पड़े। तो आत्मिक शक्ति हमको दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है ताकि परिस्थितियां आए तो परिस्थितियां हमको तूफान की बजाय तोहफा अनुभव हो, सूली की बजाय कांटा अनुभव हो, पहाड़ की बजाय राई अनुभव हो और रुई अनुभव हो, और कर्म भोग नहीं लगे वो कर्म योग, दूसरों को भी वो कर्म योग का वर्णन करे, कर्म भोग का वर्णन न करे और संतुष्ट रहे। तो संतुष्टता स्वयं भी रहेंगे तो दूसरों को भी। इसलिए देखते हैं दादियों या किसी भी को भी जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है तो बीमारियों का वर्णन नहीं करते। हम कई बार देखते हैं, एक हमारे यहाँ भाई थे संजय भाई, पैरे में थे, जिनको कैंसर हो गया था, चली छोड़ दिया, एक साल हो गया ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो जो हम जब भी उनको देखने जाते थे तो सामने से ही पहले वो हमारा हाल पूछते थे, और ये नहीं कि कोई जानबूझकर पूछ रहे हैं वो, और साथ में मुरली सुनाना शुरू कर देते थे। उनको पता था मैं शरीर छोड़ के जाने वाला भी है, सब है, लेकिन वो कॉन्शियस नहीं है बीमारी की उनको, यहां उनका नाइट सिक्योरिटी होती थी। तो लंबे समय से और देखा उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया, माना वो मुरली कैसे उनके अंदर ऐसे समा गई कि नेचुरल निकल, उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो कर्म भोग की बजाय कर्म योग का वर्णन, वो ज्ञान स्वतः हमारी मन बुद्धि से निकलता रहे, उसके डांस होते रहे। बाबा ने कहा ना तुम्हारी बुद्धि नाचती रहती है कब, हाँ तुम्हारी बुद्धि में अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान बैठे इसलिए बुद्धि नाचती रहती है। और आज भी नाच की बात थी, कौन सी थी, आज कहाँ नाचे थे, पैरों से ऊंची स्थिति। हाँ हाँ, बाबा ने खाओ पियो घूमो नाचो, है ना, तो वो वाली बात थी। तो ये है कि आत्मिक शक्ति हमको दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। तो फिर बाबा ने आज कुमारियों से बात की, हम अलग अलग तरीके से बीच बीच से इधर से उधर छलांग मारेंगे मुरली में। तो आज कुमारियों से बात की, कुमारियां क्या, कुमारियों के बारे में बाबा ने क्या क्या बताया, कुमारियां कौन है, बहुत सारी परिभाषाएं बताई मुरली में, 10-11 परिभाषाएं हैं। कुमारी अर्थात श्रेष्ठ कुमारियां, विश्व कल्याणकारी, कोई बंधन नहीं, स्वतंत्र हैं, उड़ता पंछी हैं, और नौकरी की टोकरी से मुक्त, और हाँ सोचना नहीं है करना है, कुमारी अर्थात समझदार, और कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। बंधन से क्या होता है, कितने प्रकार के बंधनों में बांध के रखते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा ने तो बता दिया है कि ये विश्व कल्याणकारी, ये श्रीमत है बाबा की, लेकिन फैसला करो। तो कुमारिया फैसला करने वाले तुरंत, दूसरों के कहने पर चलने वाले नहीं। बाबा ने कहा अगर दूसरे के कहने पर फैसला करते तो क्या होता है, मेहनत करनी पड़ती है, और स्वयं के मन के उमंग उत्साह से फैसला करते हैं तो मेहनत नहीं लगती है, वो सहज होता है। तो वास्तव में आजकल देखा जाता है कि कुमारियां समर्पित कम होती हैं, कुमार तड़पते रहते समर्पित होने के लिए, और कुमारियां नौकरी के लिए तड़पती रहती है आजकल। तो कलयुग का अंत आ रहा है, ऐसे होता है। तो बाबा ने कहा कुमारी अर्थात विश्व कल्याण के लिए समर्पित, निर्बंधन, स्वतंत्र, उड़ता पंछी, स्वयं फैसला करने वाली, स्वयं जज करने वाली है ना, समझदार, सोचा और फैसला किया तुरंत, किसी के कहने पर चलने वाली नहीं है, स्वयं कोई बकरी थोड़ी नहीं है, शेर नहीं है, है ना, क्योंकि किसके बच्चे हैं, सुप्रीम अथॉरिटी के हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। अब शेर का बच्चा गीदड़ होगा कोई? तो जब हम विस्मृति में रहते हैं, भगवान के बच्चे हैं ये, हमको विस्मृति हो जाती तो क्या होता है, फिर माया के बच्चे लगते हैं, कितना फर्क पड़ जाता है। तो जहां स्मृति की रोशनी है, स्मृति का प्रकाश है, वहां किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होती है। कमजोरी कहां होती है, जहां अंधकार विस्मृति है। अंधकार है तो डर होता है, फिर अनेक प्रकार के अनुमान लगाते हैं अंधकार में, तो विस्मृति का अंधकार है। ज्ञान हमारी स्मृति में रहता है तो निरंतर हमारा उमंग सा कायम रहेगा। सारी हमारा जो स्थिति हमारी ऊपर नीचे होती है तो हम भूल जाते हैं ज्ञान को, इसलिए विस्मृत हो जाते हैं। ज्ञान अज्ञान माना अंधकार, विस्मृति माना अंधकार, और अंधकार में क्या ठोकर लगेगी, डर लगेगा, भय लगेगा, अज्ञात का भय, और अंधेरे में कोई भी हमको अटैक कर सकता है ना। विस्मृति है तो माया किसी भी रूप से अटैक कर सकती है। अगर हमको ज्ञान की रोशनी है तो हम जागृत रहेंगे, रोशनी के सामने कोई जानवर नहीं आता है। अगर अंधकार है तो कई प्रकार के जो जानवर हमारे अंदर ही है, माया भी जानवर, वो हमें अटैक करते रहते हैं। सूक्ष्म रूप से कमजोरी के संकल्प हैं, या अपने अंदर कोई गिल्ट कॉन्शियस है, पुराने स्वभाव संस्कार हैं जिनके हम वशीभूत हो जाते हैं, या दूसरे की कमी कमजोरियों को देखते रहते हैं, या किसी ने कुछ कह दिया तो फिर उसको उस बात को बैठ के पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये सारी माया कैसे अटैक करती है, किसे, केवल विस्मृति हो जाती है। हमको केवल ये भी स्मृति रहे कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, निरंतर स्मृति रहे तो भी हम माया जीत बन सकते हैं। तो आज की मुरली सारी इस पर थी ना, प्रकृति जीत माया जीत है ना, स्वराज्य अधिकारी ही प्रकृति जीत माया जीत है। तो यह है कि कुमारी जीवन अर्थात भाग्य बनाने वाली, सबसे पहला भाग्य है कुमारी जीवन। तो बाबा ने कहा भाग्य में भी भाग्य बनाते जाओ, भी स्वयं का भी और दूसरों का भी। भाग्य का उदय हो गया है, अब भाग्य के निर्माण की कलम बाबा ने हम सबको हमारे हाथ में दे दी है। अब लकीर कितनी खींचनी है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य, सारे कल्प का 84 जन्मों का भाग्य का निर्माण केवल इसी थोड़े से समय में करना है हमको। तो कितना हमको खबरदारी रखनी पड़ेगी, कितना कदम कदम पर हमको सोच समझ के चलना पड़ेगा। अटेंशन है ना, अटेंशन बाबा ने दो चीजें बताई थी, एक अटेंशन वरदान किसको, सेवादारियों के साथ डबल वरदान मिलता है। तो ये था कुमारियों से, तो कुमारी अर्थात हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब वही है, पवित्र जीवन है ना। तो ये सारी बातें हम सबके साथ लागू होती है, चाहे माताएं हैं, भाई हैं, पिताएं हैं, कोई बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी है, सबके लिए शिक्षा है। तो उसमें समय पर सबके लिए एक जैसी है। तो सब जो भी बाबा के सामने ग्रुप होता है उसी के अनुसार बाबा उनको सुनाते हैं, शिक्षा देते हैं। लेकिन है तो वास्तव में हम सबके लिए, एक एक महावाक्य में कितनी शक्ति भरी हुई है। एक ही महावाक्य अगर हमारे दिल को लग जाए तो जैसे नींद फिट जाए, अर्थात विस्मृति की निंद्रा उड़ जाए, है ना। निंद्रा भी कितने प्रकार की, एक तो बेहोशी की निंद्रा है, माना ज्ञान है हमको लेकिन ज्ञान होते हुए भी उसको विस्मृत हुए, विस्मृति की निंद्रा है। तो हमको इस अज्ञान की नींद से हमेशा जागृत रहना है, किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई युक्ति से हमें अपने मन बुद्धि का तार बाबा से जोड़ के रखना है। चाहे हम बाबा की सेवा करते रहें, चाहे किसी से ज्ञान चर्चा करते रहें, चाहे अपना मन चिंतन करते रहें, चाहे कुछ लिखें, चाहे किसी को सुनाएं। तो ये है कि हमको हमेशा अपने आप को जागृत रखना है, ठीक है। तो ये था कुमारियों से मुलाकात। फिर बाबा ने अंतिम टुब्बी, ये जो मिलन मेला था 1985 में 30 जनवरी, तो 30 जनवरी में ये जो मेला था इसमें अंतिम टुब्बी भारतवासियों की थी। उस समय सीजन तो अभी तो मार्च में अप्रैल में लास्ट होता है, उसमें शायद 85 जनवरी में होता होगा। तो जनवरी का अंतिम मिलन, बाबा ने कहा मिलन मेला है तो ये अंतिम टुब्बी में है। तो जैसे बाबा ने एग्जाम्पल बताया, अगर बाहर मेले में जाते तो क्या होता है, उसका महत्व होता है उसका टुबकी का, क्योंकि पता ये अंतिम है तो सारे पाप धोने के लिए विधि विधान पूर्वक पूरा वो स्नान पानी करेंगे। तो बाबा ने कहा आप यहां आए हो तो आप सभी अपने पापों को भस्म करके जाओ, पांच विकारों में से एक भी नहीं होना चाहिए, अगर एक भी होगा तो क्या होगा, पीछे भी आ सकते हैं भूत बनकर, एक भी भूत रह गया तो ये चारों पीछे आ जाएंगे, है ना। राख भी नहीं लेके जानी है ना, राख भी कई बार ऐसे भी होता है, कई शमशान घाट में ना ऐसे भी होता है, जब शमशान में मुर्दे को जलाया जाता है तो कोई कोई कहीं ऐसी परंपराएं हैं, जो जादू टोटके टोने वाले लोग होते हैं ना तो वो उसकी राख को उठा के ले जाते हैं, किसकी, जो कुमार या कुमारी होते हैं, इसलिए वो कुमार कुमारी जहां जलाते हैं तो उनके जलाने के बाद सारी राख इकट्ठी करके ऊपर से गोबर से लीप के और वो दूध लस्सी से उसको धुलाई करके फिर बांह छोड़ते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बाबा ने कहा राख भी नहीं रहनी चाहिए, सब राख समंदर में सुहा कर दो, तो नहीं तो एक भूत भी रह गया तो सारे भूत पीछे आ जाएंगे, है ना। तो एक बार क्या हुआ, हमने देखा नहीं सुना है, तो एक माताजी सवेरे सवेरे जा रही थी सेंटर में, सवेरे अमृत वेले नजदीक सेंटर होगा, तो चार वही 3:30-4 का टाइम होगा, तो एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, तो माताजी व्हाइट कपड़े में बाल खुले हुए अमृत वेले के लिए जा रहे, बड़े उमंग साथ खड़ी माताजी, तो उस ऑटो वाले को रोक दिया, तो ऑटो ने देखा कि माताजी के पांव उल्टे तो नहीं गई, ये कोई भूत तो नहीं गई, तो देखा पांव सीधे ही है, चलो ठीक है बोला, ठीक है आदमी है कोई भूत ही नहीं है, तो बोला बैठो, बैठ गई माताजी। फिर रास्ते में रोका, बोला भैया यहां रुकना, तो उतरी बोला रुकना यहां से ना दो आत्माएं और आने वाली है, जैसे बोला दो आत्मा भागा फटाफट उधर से। तो ये देखना है कि तो बाबा का ज्ञान भी कैसा है। और एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि एक माता जी, तो बाबा कहते ना अपने ये जेवर एवर नहीं पहनने चाहिए, है ना। तो एक माता जी जा रहे थे, जेवर पहने हुए थे, चैन पड़ी हुई थी, तो वही अमृत वेले तो सवेरे अंधेरा ही होता थोड़ा, तो कोई दो लुटेरे आए, डाकू वाकू आए, चाक उन्होंने देखा कि तो सोने की चैन पड़ी है गले में, तो बोला माता जी चैन निकाल दो तो मार देंगे तुमको। बोला मैं तो आत्मा हूं, मेरा तो शरीर मरता ही नहीं है। जैसे बोला मैं आत्मा हूं, मैं तो मरती नहीं हूं, भागे फटाफट वहां से, बोले को भूत ही है। तो वैसे भी होता है कि बाबा का ज्ञान हमको कहां बचा देता है ना। बाबा ने कहा ये बैज भी क्या है तुम्हारा, ये कवच है, ये सुरक्षा कवच है। तो बाबा का ज्ञान जो बड़ा रमणीक भी है, कदम कदम पर हमें सुरक्षित भी करता रहता है। तो आज बाबा ने हम सबको साक्षात्कार कराया स्वर्ग का। अब हम देखेंगे बाबा ने किसको देखा, एक राज्य दरबार देखा, उस राज्य दरबार में कौन थे, सभी सुराज्य अधिकारी थे, और उन सुराज्य अधिकारियों की निशानी क्या बताई, कैसे होते हैं वो, मायाजीत प्रकृति जीत, और अब हाँ मायाजीत और प्रकृति जीत, अब उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, पहले स्वराज्य अधिकारी, फिर उन स्वराज्य अधिकारी अगर वो होंगे तो फिर ये माया और प्रकृति ये पांचों तत्व उनके दास होंगे, लेकिन वो बनेंगे कैसे, उनकी क्या विशेषताएं हैं। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं, बाबा ने कहा वो बच्चे सदा कैसे होंगे, बाप की स्किल दे बच्चे, स्नेही बच्चे, बेहद के सेवादारी बच्चे, वो अमूल्य मणियां हैं, वो अनन्य बच्चे हैं, वो नए विश्व के फाउंडेशन हैं, विश्व के निर्माता हैं, ये स्वराज्य अधिकारियों की निशानियां बताइए। तो ऐसे बच्चों की बाबा सभा देख रहे हैं। अब उसके आगे बताया कि वो तिल ताज तक तिलक, तो कौन सा तिलक था, कौन सा ताज था, और जो तिलक था जो दिव्य चमकता हुआ अमूल्य मणियां मस्तक में, जैसे हमेशा आत्मिक स्मृति, कोई ना कोई बाबा के साथ किसी न किसी संबंध का अंदर ही अंदर हमारा अनुभव हो रहा है तो वो तिलक लगा हुआ, जैसे समृद्धि का तिलक लगा हुआ है अंदर में, चमकती हुई चमकता हुआ दिव्य समृद्धि का तिलक। और ताज, दो ताज, एक है सर्व विशेषताओं का ताज और दूसरा पवित्रता का ताज और सर्व गुणों का भी, गुणों की माला, फिर गुणों की माला ही बाबा ने देखी। और सिंहासन, श्रेष्ठ स्थिति का सिंहासन। तो सब जैसे देखो ये जो मुरली है ये सारा ना योग खाली सुनने वाली नहीं है, ये सारे दृश्य मर्ज होने चाहिए, है ना। जैसे बाबा जिम्मेवारी का ताज पहना रहे हैं, पवित्रता का ताज पहना रहे हैं, लाइट का ताज पहना रहे हैं, सर्व गुणों की माला पहना रहे हैं, कौन कौन से गुण है वो फिर धीरे धीरे याद करना सारे गुण, है ना। यहां से लिखे ना 36 गुण याद है किसी को, तो याद होने चाहिए। 56 प्रकार के भोग तो याद है हमको, लेकिन 36 प्रकार के गुण याद नहीं रहते हैं। तो कौन कौन से वो 36 प्रकार के गुण? हाँ, और अंतर्मुखता, धैर्यता, नम्रता, मधुरता, संतुष्टता, निर्भयता, निश्चिंतता, परोपकार, पवित्रता, हर्षित मुखता, हल्कापन, न्यारापन, निश्चिंतता। और तो याद करने का मैं सरल तरीका बताता हूं, 36 के 36 याद हो जाएंगे। अल्फाबेटिकली याद करना, जैसे अथक, अंतर्मुखता, अनुशासन, आत्मविश्वास, आज्ञाकारी, ये कितने हो गए? 5 हुए, एक आप खा गए, 5 हुए। अथक, अंतर्मुखता, अनुशासन, आज्ञाकारी, आत्मविश्वास, है ना। फिर और 5, रमणीकता, रहमदिल, गंभीरता, परोपकार, पवित्रता, ऐसे इकट्ठा जोड़ने, अपने सारे तरीके से जोड़ सकते हैं, है ना। और साथ साथ में इनका ऊपर चिंतन भी करना है फिर, है ना। इसी तरह से फिर और 5, निर्भयता, नम्रता, न्यारापन, निश्चिंतता, निर्विकता, निरहंकारिता, नियमितता, ये शेष 7 इकट्ठे हैं ये एन से। फिर हल्कापन, हर्षित मुक्ता, फिर मधुरता, धैर्यता, दूरदर्शिता, दृढ़ता, 5 ही ऐसे हो जाते हैं। फिर स्नेह, सहयोग, सादगी, साहस, संतुष्टता, सहनशीलता, सरलता, स्वच्छता, श्रेष्ठता, शालीनता, ऐसे हो जाते हैं। 36 हो गए, ज्यादा तो नहीं हो गए कहीं, यहां ही 36 से ज्यादा कहां से होंगे। तो ये देखना हमारे गुणों, अपना गले में दिव्य गुणों की माला पड़ी हुई है, अगर नहीं पड़ी है तो याद करना है। ये योग में अपने आप को जागृत रखने का सहज तरीका है, नहीं तो अगर बिना उसके स्मृति के बैठेंगे, बिना स्मृति के बैठते तो योग में भारी लगता है, मजा नहीं आता फिर। इसलिए थोड़ा रमणीकता वाला योग होना चाहिए, उसमें अपनी बुद्धि को बिजी रखना है। ये भी योग है बाबा के साथ, एक स्टेप है योग के, धीरे धीरे पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, फिर अंत में ऐसा समय आएगा कि सारे गुण ना एक सेकंड में सारी बुद्धि में घूम जाएंगे, बार बार जरूरत नहीं करनी पड़ेगी मेहनत करने की, तो बुद्धि में घूम जाएंगे और स्थित हो जाएंगे मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा हूं। और क्योंकि जो हमारी अंतिम एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसा प्रमोदन, तो पहले से हमको तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो धीरे धीरे जब ये हम करते जाते हैं तो अंत में एक ही बिंदु पर रुक जाते हैं, वो सत्यम शिवम सुंदरम में, वो सुंदरम में सारा सुंदरता समाई, उसमें सारा सुख समाया हुआ है। तो उस बिंदु में जब एकाग्र हो जाएंगे ना तो अपने आप इतने मन बुद्धि भटकेगा नहीं, उसमें सुख मिलने लगेगा और पता नहीं चलेगा टाइम का पूरा हो गया है ना। नहीं तो कई बार होता है मन बुद्धि भारी होता है तो लगता है पौना घंटा ही बहुत भारी लग जाता है, एक घंटा ही भारी लगता है, और जैसे अवस्था अच्छी है तो 1.5 घंटे भी कभी बीत जाता है, पता नहीं चलता है। तो ये है कि बाबा जो भी हमको ज्ञान, गुण, शक्तियां, खजाने, पवित्रता, दुआएं जो भी देते हैं, नाव खजाने, ये हमारी बुद्धि में बार बार घूमते रहने, क्योंकि संस्कार डालना कोई मासी का घर नहीं है, लंबे समय की बात है। पुराने संस्कार कैसे पड़े हुए हैं, है ना, धागे इकट्ठे करते जाओ, इकट्ठे कर मोटा रस्सा बन जाता है, फिर टूटना मुश्किल होता है। इसी तरह हमारे पुराने संस्कार है भी सूक्ष्म धागे हैं, अब ये बड़े मोटे हो गए हैं, इनके टूटना सहज बात नहीं है, इसलिए नए धागों का निर्माण करना है, ज्ञान के धागे। तो वो ज्ञान हमारी बुद्धि में चलता रहेगा तो एक ज्ञान शक्तियों का जो है ना मोटा रस्सा हो जाएगा, फिर वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा एक संस्कार, सबसे पहले तो हमको ज्ञान सुनने के भी संस्कार चाहिए, क्योंकि समझ तो बड़ी देर बाद में आता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी मुरली मिस नहीं करो, भले समझ में नहीं आती है, थोड़ा भी दो ही पॉइंट आते हैं, लेकिन कम से कम पहले ज्ञान सुनने के संस्कार तो डाल रहे हैं हम, वहां एक हमारी हाजिरी तो लग रही है, वहां बैठ के थोड़ा थोड़ा आत्मा के अंदर शक्ति भरेगी, थोड़ा रस बैठने लगेगा। बताया था ना, पहले बताया था कि कोई ऐसा मोमेंट आएगा जिस मोमेंट में हमारा परिवर्तन एक सेकंड में जल्दी स्पीड पकड़ लेगा वो, है ना। जैसे मोबाइल होता है, नेटवर्क होता है, जितना मर्जी कोशिश करते रहो, है ना, कोई कोई कंपनी का होता है जैसे जिस एरिया में जाएंगे तुरंत कनेक्शन पकड़ लेगा जहां उसका सिग्नल होगा। तो उसी तरह से आत्मा भी लंबे समय तक हम आत्मिक अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे 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 हमारा पुरुषार्थ स्पीड पकड़ लेगा और फिर नेचुरल हो जाएगा, मुश्किल नहीं लगेगा। तो यह था कि स्वराज्य अधिकारी, बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी जो किसी के वशीभूत में नहीं है, उनके अंदर उनको स्वराज्य अधिकारी वो है जो कौन बन सकता है, जो दास दास हैं जिसके अधीन में। और फिर बताया बाबा ने, आज तो इस संसार में क्या करते हैं, दुख और धोखा देने वाले प्रकृति भी और माया के विकार भी, है ना। कैसे धोखा देते हैं, अचानक बरसात आ गई पता नहीं चला, छतरी तो थी नहीं साथ में, भीग गए सारे पता थोड़ा चला। ऐसे अचानक दुख देने वाले या धोखा देने वाले संसार में, चाहे प्रकृति के तत्व हैं चाहे विकार हैं, दुख और धोखा कदम कदम पर देते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी वो हैं जो तमो प्रधान को भी सतो प्रधान बना देते हैं ना। जैसे बड़ा ऑफिसर होगा, अगर पावरफुल ऑफिसर है तो सारे जो कितने भी कैदी हैं, खूंखार है, दुर्दांत कैदी हैं, उनको भी बड़े प्यार से उनको धीरे 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 उनको अपना मित्र बना लेगा। ऐसे बहने जाती हैं जेलों में सेवा करने के लिए, क्या होता है कितने कैदी बदल जाते हैं, है ना। पंचम सिंह जी सुना होगा ना सभी ने, तो देखो उनका जीवन कैसे हो गया, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने कितना इनाम रखा हुआ था, कितने उनके अंडर में लोग डकैत करते थे और सारे सरेंडर हो गए, तो कैसे जेल में फिर उनको धीरे धीरे जैसे ज्ञान मिला, साक्षात्कार हुआ बाबा का, देवी का साक्षात्कार हुआ, तो कैसे परिवर्तन कर गया। और आज उनकी लाइफ देखो, अनेकों की लाइफ बनाने में वो लगे हुए। तो कैसे बाबा ने कहा जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं वो तमो प्रधान को भी सतो प्रधान बना लेंगे। तो हमारे अंदर इतनी शक्ति भर जाए कि सामने वाला भी वो प्रेरणा ले। बताया ना सेवादारी से बाबा ने मुलाकात की कि सेवादारी अर्थात क्या, मौज बनाने वाले। सेवादारी अर्थात याद और सेवा में सदा मौज में रहने वाले, मूंजने वाले नहीं। मूंज का जीवन नहीं है, मौज का जीवन है, ये मौजों का युग है। तो मौजों का युग है, उमंग उत्साह का युग है। अर्थात बाबा कहते उनकी मूंज तुम्हारी मौज को देख के समाप्त हो जाए। अगर वो मूंज में आपके संबंध संपर्क में आते हैं तो उनकी मूंज समाप्त हो जाए और वो उमंग उत्साह में आ जाए, वो भी मौजों का जीवन बन जाए उनका। तो ये मौजों का जीवन है। तो ये है कि सतो प्रधान बन जाएंगी आत्माएं जो पहले से तमो प्रधान है, किसके संबंध संपर्क में आने से, जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा है। फिर बाबा यहां से पांच प्रकृति के तत्व और पांच विकारों का बाबा ने जिक्र किया, तो बाबा ने सारा स्वर्ग का बताया। तो ये सूर्य क्या बन जाएगा, भंडारी बन जाएगा। तो ये तो सोई में काम करेगा, तो क्या करेगा फिर, एनर्जी देगा ये। और सूर्य क्या क्या करता है, पानी भी लेता है, समुद्र से भाप बना के ले गया था, और रोशनी देता है, विटामिन देता है, और है? रोशनी देता है, डर को दूर भगा देता है, और किचड़ा समाप्त करता है, खुशी भी देता है। रात क्या है, दुख है, दिन में क्या है, सुख है, खुशी है, तो खुशी भी देता है, एनर्जी देता है, विटामिन देता है। तो बाबा कहते हैं सूर्य आपका भंडारी बन जाएगा। और ये सूर्य फिर अग्नि, अग्नि क्या करेगी, सूर्य को अग्नि हो गई की बात है अग्नि के साथ ही बाबा ने सूर्य जोड़ा, चलो ठीक है। वायु क्या करेगी, पंखा तो बांध जरूरत होगी, गर्मी पड़ेगी जो पंखा चलाने की जरूरत। हाँ बाबा ने कहा ऐसा म्यूजिक चलेगा जैसे कोई म्यूजिक सिस्टम चल रहा है ना। हाँ इत्र फुलेल, वो तो जल होगा, वो जल होगा, तो हवा में खुशबू आएगी, पानी को उड़ा के लेके आएगी। तो आजकल की वायु कैसी होती है, आई की ड्रान जैसी ऐसी होती है, डराने वाली बात भी है ना। तो कितना फर्क पड़ गया वहां की वायु और यहाँ की वायु का। तो वायु नेचुरल पंखा झुलाएगी, है ना। ऐसे अलग अलग साज होंगे जैसे म्यूजिक सिस्टम बज रहा है। तो हाँ जी, पेड़ों के पत्ते ही लेंगे, पत्तियां ही लेंगी, टाल टालियां ही लेंगी, है ना। हाँ, और आजकल के पेड़ कैसे हैं, कोई तो पेड़ संसार में ऐसे भी हैं, उनके पास जाओ ना वो पकड़ लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, उस पेड़ का नाम है डेथ, कुछ ऐसा नाम है उसका, वो पकड़ लेते हैं आदमी को, मार के छोड़ते हैं वो। कुछ ऐसे भी संसार में पेड़ हैं, लेकिन वहां वाले पेड़ कैसे होंगे? हाँ, तो ये हवा हवा ठंडी ठंडी हवा देंगे, नेचुरल होगा, झूला झुलाएंगे, और जल क्या करेगा? इत्र फूलेगा का काम करेगा, खुशबू देगा। जल का बावने का आज भी गंगा का कितना महत्व है, वो क्यों महत्व है? देखो उसमें जितना मर्जी गंध होता है लेकिन फिर भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, इतनी डेड बॉडियां उसमें आ रही हैं। हाँ, शक्तिशाली होगा, तो उस गंगा के जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती का काम बना हुआ है, जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है उसमें। तो ऐसे वहां बाबा कहते जो जल होगा बहुत ताकतवर होगा, दूध, इसलिए उसका गाय ने दूध की नदी बहती थी, है ना। तो कोई कहते हैं अगर दूध का होता तो बीच में अगर थोड़ा दही डाल देंगे सवेरे तक नदी जम जाएगी सारी, वो तो दूध जो जल इतना ताकतवर होगा कि दूध पीने की जरूरत। वहां दूध पियेंगे या नहीं पियेंगे? हैं? नहीं, गाय तो होगी, प्रश्न है कि दूध पियेंगे नहीं पियेंगे। पियेंगे, जरूरत होगी। बाबा ने कहा जल इतना, वहां पहले तो यह है कि ताकत की जरूरत क्या जो दूध पीना है, हैं? पर कई बार बाबा ने मुरली में यह भी कहा हुआ है कि तुम्हारा जो दूध है ना हेलीकॉप्टर से आएगा, ये भी कहा मुरली में। तो बड़ा ज्ञान में ना कॉन्ट्रीवर्सी बहुत है इसमें, तो इसलिए बाबा ने कई बातें छोड़ देनी चाहिए। बाबा समय अनुसार जैसे है उसी अनुसार बात करते हैं। एक आने वाले एक दो दिनों के बाद की मुरली है, तो उसमें भी बाबा ने बताया कि ऊपर आसमान में कितने सितारे होंगे, फिर अच्छा चैतन्य धरती के सितारे कितने होंगे। फिर बाबा ऐसे जिक्र करते करते बाद में कहता है, बाबा कहते इस बात को छोड़ दो, अभी इस बात को बाबा नहीं छेड़ते हैं, तुम सोचते रहना। तो ऐसे इस ज्ञान में भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है। बाबा कहते जो समझ में आया केवल वहां उसको समझ होती है, और जो हमको समझ में नहीं तो उनको समझने की जरूरत भी नहीं है, नहीं तो उनको समझने में हमारा टाइम वेस्ट लगा, विकर्म का विनाश करेंगे। जितना हमको ज्ञान समझ में आया उस ज्ञान को हम पचा लें तो भी हमारा सौभाग्य है ना। तो वहां का जल जैसे दूध जैसा होगा, ताकतवर होगा, और पृथ्वी क्या करेगी? अनेक प्रकार के फल और फूल देगी। देखो पृथ्वी में भी कितनी ताकत है, इन पांच तत्वों ने हमारी स्वर्ग से लेकर कलयुग के अंत तक कितनी सेवा की है। अब धरती के अंदर देखो एप्पल लगते हैं या केले लगते हैं, वो कहां से मिठास आती है? सब धरती से आ रही है। बाबा कहते टमाटर बहन नमक और चीनी की जरूरत नहीं है, टमाटर डालेंगे ऐसे हो जाएगा, वो नेचुरल उसकी इसेंस आ जाएगा उसके अंदर। तो इस धरती के अंदर भी देखो कितने रंग भरे हुए, दिखते थोड़े नहीं है। अब फूल देखो, गुलाब का फूल है, ऊपर से कितने प्रकार के वेरायटी गुलाब है, लेकिन वो दिखता थोड़े नहीं है। वो कितना गंध होता है, गंदगी से वो कितना ग्रहण कर लेता है, खुशबू देता है ऊपर गुलाब का फूल। तो ये सारी बॉडियां जल जाएंगी, सब विनाश हो जाएंगी, ये तो कितनी धरती को मैल मिलेगी, कितने वो ताकतवर उपजाऊ उसकी शक्ति हो जाएगी, धरती की शक्ति कितनी ये हो जाएगी, पोषक तत्व तो उसमें हो जाएंगे, तो उसके कितने सुंदर फल होंगे, कितने मीठे मीठे फल होंगे। वो तोड़ने में नहीं पड़ेंगे, जाएंगे ना वो डाली नीचे आएगी, मुंह के पास आएगी और खा लेंगे हम। ऐसे आज भी हाँ, धोने की जरूरत नहीं है, धोने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तो डस्ट है ही नहीं ना, तो धोने की जरूरत नहीं है। तो फल कितने स्वादिष्ट होंगे, वहां बड़े बड़े फल होंगे, है ना। तो ये धरती फल देगी, अनाज देगी, श्रेष्ठ अनाज देगी, तो धरती पालना करेगी, इसलिए धरती को माता कहा जाता है, धरती माँ। तो अग्नि सूर्य भंडारी बन जाएगा, जल आपको इसेंस बन जाएगा, आपको खुशबू देगा, और वायु झूला झुलाएगी, पृथ्वी ये होगी फल फूल देगी, और आकाश क्या करेगा? राजपथ बन जाएगा। तो राजपथ में क्या करेंगे? विमान चलाएंगे, तो जरूरी है चलाना। हाँ, वहां उस विमान से क्या होगा? एक्सीडेंट भी नहीं होगा। अच्छा, ट्रैफिक कंट्रोल की भी जरूरत नहीं है, ट्रैफिक वाला आएगा, वो सीट बेल्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां इतना कितने नियम हो रहे हैं कड़े, है ना। और फिर वहां कोई हद भी नहीं है, हाँ जी, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ये 8 साल का बच्चा भी चला सकता है। और उसको कितने स्विच होंगे? दो ही स्विच होंगे, दो ही होंगे, एक जाने का एक आने का। अच्छा, जाने का आने का होगा तो उसको स्टेयरिंग नहीं होगा कुछ, भाई कहाँ जाना, आपको स्विच दबा दे चालू हो गया, ठीक है, संकल्प से। वो संकल्प से पता कर लेगा। सब चीजें आ रही हैं, साइंस अभी बहुत एडवांस हो चुकी है, इतनी एडवांस हो चुकी है कंप्यूटर व्यूम्प्यूटर सब खत्म। अभी ये जो मोबाइल है कितना कुछ खा गया, ये मोबाइल बहुत कुछ खा के चला गया, ये चला के नहीं गया अभी तो है, इसके अंदर कैलकुलेटर खा गया, घड़ी खा गया, टॉर्च खा गया, टीवी खा गया, कंप्यूटर खा गया, जी रेडियो खा गया और दिमाग भी खा गया। तो आजकल की साइंस देखो क्या क्या खा रही है ना? और ये मोबाइल बड़ा खतरनाक है। एक दिन वीडियो आया था तो वो माता जी रिक्शा में बैठी है, बच्चा उसका साथ में है, वो बच्चे को भूल के चलेगी, बताओ अब कैसी माता जी है वो। चलो माता जी नहीं, भाई भी हो सकता है, लेकिन कैसे मोबाइल कैसी चीज है। वो पीछे से रिक्शा वाला चलाता रहा, माता रहा, माता अपने बच्चे को दे लो, वो इतनी बिजी उधर सुन भी रही है, और बाद में देखो बेचारे कितने शर्मिंदा हुई। तो बताओ ये हाल हो गया संसार का, घर में भी माँ बाप इतनी दूरियां बढ़ती रहती हैं, माँ बाप बच्चे सब मोबाइल में लगे हुए हैं। आजकल गांव में भी जाते हैं तो पहले का और अभी का बहुत फर्क पड़ गया हुआ है। पहले जो आप भगत होती थी अभी तो कुछ है ही नहीं है, वो बच्चे मोबाइल से या टीवी से लगे रहते हैं, तो कितना फर्क पड़ गया इसका। तो ये साइंस जो है ना, अभी ये साइंस विभाग कहते क्या अभी दुख और धोखा देने वाले हो गए हैं। तो ये साइंस कितनी रिफाइन थी वहां, जो हो जाएगी रिफाइन, तो ये है आकाश मार्ग भी राजपथ बन जाएगा। विमान कहाँ खड़ा करेंगे, वहां उसके एरोड्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी कि विमान कहाँ खड़ना, सीधा घर में उतरेगा, क्योंकि जगह तो बहुत होगी, कितनी कितनी जगह होगी एक एक के पास। आबू जितनी बस, आबू जी छोटा सा है, आबू जितना तो एक एक कमरा होगा। पर सोच रहे सफाई कौन करेगा अभी। हाँ डस्ट नहीं है वहां तो ना, तो वहां तो बहुत जमीन होगी है ना। तो ये था, अभी रहेगी पांच विकार है ना। तो पांच विकार में काम के बारे में क्या बाबा ने कहा, काम विकार शुभ कामना श्रेष्ठ कामना में बदल जाएगा। कौन सी शुभ कामना, शुभ कामना भावना, शुभ कामना श्रेष्ठ कामना होगी, उसके बारे में बाबा ने जो चार बातें बताई, पांच बातें, कि ये जो विकार है और प्रकृति के तत्व, आपकी कामना है अंदर से कि ये बन जाए, ये शुभ कामना है। और लोभ के बारे में क्या बताया, शुद्ध लोभ, अर्थात लोभ कौन सा है, लोभ हमारे अंदर होता है किस चीज का लोभ होता है, ये चाहिए वो चाहिए। तो बाबा ने कहा लोभ अर्थात मैं बाप समान बन जाऊं, है ना। और क्या बताया, लोभ अर्थात नहीं क्रोध नहीं, लोभ के और दो बातें हैं, विशेष आत्मा बन जाऊं, हाँ, और बेफिक्र बादशाह बन जाऊं। अहंकार में ये अहंकार की बातें बताई, हाँ ठीक है, ये अहंकार की बातें हैं, विशेष आत्मा बन जाऊं, बेफिक्र बादशाह बन जाऊं, देह वो है देह अभिमान से देही अभिमानी बन जाऊं, है ना। और क्रोध के बारे में योग अग्नि, तो खाली बाबा ने योग अग्नि है, तो कैसे योग अग्नि में परिवर्तन करेंगे क्रोध को, जब क्रोध आएगा तो योग लगेगा उसमें, तो कैसे बदलेंगे, है जी। पर उसमें तो क्रोध की आग लगी होती है, शांति आएगी कहां से, शांति तो पहले से भस्म हो चुकी होती है। तो उसका अर्थ यह है कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोध जिसमें हम करते हैं उसमें अंदर में बहुत दृढ़ता होती है, आदमी को आगे पीछे कुछ दिखता नहीं, वो करके छोड़ता है। तो पहले से अगर हमको दृढ़ता की प्रैक्टिस है तो वो योग अग्नि में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो क्रोध अग्नि को योग अग्नि में परिवर्तन करना, अर्थात हमारे अंदर दृढ़ता का गुण पहले से इतना पक्का हो जाए कि जब भी कोई ऐसा सर्कमस्टांस ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हम उस समय थोड़ा शांत हो जाएं, वो क्रोध से किनारा कर लें, सामने वाले को ऐसी प्रतिक्रिया नहीं कर ले कि सामने वाला आग बबूला हो जाए या हमारा ही खून खोलने लग जाए, ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी अगर पहले से हमारी योग अग्नि हमेशा से प्रज्वलित है। तो अपना हमेशा योग अग्नि को जला कर रखना है ना। बताया ना, जहां अग्नि होती है तो जान बन नहीं आती, तो किसी प्रकार की माया नहीं आएगी अगर हमारा निरंतर किसी न किसी तरीके से योग के विभिन्न अभ्यास चलते रहेंगे। तो हर तरीके से मनोरंजक रोचक तरीके से हमको योग के अभ्यास करते रहना है ना। तो हमेशा ये योग अग्नि जलाकर रखनी है। और अहंकार क्या करेगा, अहंकार क्या करेगा, नम्रता। हाँ वो देह अभिमान को देह माने में बताया शुद्ध और हाँ और मोह की बात थी एक है ना। मोह क्या करेगा, बाबा ने कहा ना बाप से तुम बच्चों को बहुत मोह है, हैं? हाँ तो जब भी हम किसी को देखें या कोई हमको देखे तो हमारे नैनों से बाप दादा दिखाई दे, हमारे बोल से, हमारे कर्म से, हमारे संबंध संपर्क से जैसे बाबा की उनको अनुभूति हो, बाप की याद आए। तो ये था और के ये हो मोह के मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा बन जाऊं, विशेष आत्मा बन जाऊं, बाप संबंध बन जाऊं, ये था मोह। तो ये थे पांच विकार, पांच प्रकृति के तत्व है ना। और किसके साथ था, अंतिम टुब की भी होगी। फिर बाबा ने सेवादारियों के साथ बात की, सेवादारी अर्थात सबदा सफलता मूर्त, सफलता मूर्त बाबा ने कहा जन्म सिद्ध अधिकार है, और जहां अधिकार होता है वहां मेहनत नहीं होती है, अधिकार स्वतः होता है, सफलता वहां सफलता हर कदम में हुई पड़ी है, समाई पड़ी है। और कौन से दिन समाप्त होगी, विदाई किस में, एक सेंटेंस बहुत अच्छा कि अभी ये दिन समाप्त हो गए, कौन से, हाँ वियोग के दिन समाप्त हो गए, बाबा जाने लगे ना तो विदाई किस में गीत गाने लगे कि अभी ना जाओ छोड़ के, ये गीत गाया होगा कि जी अभी भरा नहीं। तो बाबा ने मुरली में डायमंड हॉल में, ये तो 85 की है लेकिन कुछ साल पहले शायद ब्रजमोहन भाई जी ने गीत गाया था स्टेज पर, रमेश भाई जी, नलनी बहन जी, हाँ नलनी बहन जी, तो शांतिवन में स्टेज पर गाया था। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया, बोला तो दिल भरेगा भी नहीं आपका दिल भरेगा भी नहीं, और अच्छी बात है भरना भी नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा बाप जितना प्यारा है उतना न्यारा भी है, तो उतना न्यारा प्यारा रहना है। तो ये वियोग के दिन समाप्त हो गए, सदा बाप के साथ में रहो। तो ये सारी मूल्य थी। तो सबसे पहले हमने देखा कि बाबा ने एक राज्य दरबार देखा, उस राज्य दरबार में कौन देखा, जो स्वराज्य अधिकारी है। बाबा ने कहा सारे कल्प में ऐसा दरबार कभी कहीं भी नहीं होगा, इस राज्य दरबार में कौन है, वो राज्य दरबार है, वो इस राज्य दरबार में वो स्वराज्य अधिकारी आत्मा है जो प्रकृति जीते और माया जीते हैं, प्रकृति के पांचों तत्व और माया के भी पांचों विकार, काम क्रोध लोभ अहंकार, उनका सारा विस्तार बताया। और प्रकृति के पांचों तत्व अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये अग्नि सूर्य तुम्हारा भंडारी बन जाएगा, वायु पंखा झुलाएगी और डालियां हिलेंगी तो अलग अलग तरह के साज आएंगे, और जल इत्र फुले, हाँ पहाड़ बने वो पृथ्वी के बारे में, और जल जो है इत्र फुलेल का काम करेगा, बड़ा खुशबूदार आएगा, जड़ी बूटियों की आएगा ना उसमें सम्मिश्रण होके तो बड़ी खुशबू देगा, और पृथ्वी तरह तरह के फल देगी, हाँ जी जल शक्तिशाली होगा, बताया दूध का काम करेगा। तो बीच में बात चल रही थी वहां दूध पियेंगे, पियेंगे तो वहां कमजोर होंगे जो दूध पियेंगे, वो तो इसलिए कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी है तो पनीर खाते हैं। अच्छा मौज करेंगे, हाँ पंछियों के और फूलों के माफिक पहाड़ होंगे वो, तो वो वाला भी तो दूध होगा माना वहां, इसका अर्थ है कि आपको पनीर पसंद है। तो हेलीकॉप्टर से हो तो बाबा ने साकार में अंतिम बोला कि हेलीकॉप्टर से दूध आएगा। तो ये पृथ्वी जो है अलग तरह के पंछियों के मौफिक पहाड़ होंगे, फूलों के मौफिक पहाड़ होंगे, तो भी वो भी रंग बिरंगे होंगे। तो ये भी जो है अग्नि, ये प्रकृति के पांचों तत्व अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश में राजपथ विमान और पांच विकार काम क्रोध लोभ अहंकार। काम जो है वो शुभ कामना श्रेष्ठ कामना में बदल जाएगा, लोभ जो है वो बाप समान बन जाऊं इसमें बदल जाएगा, और मोह जो है कि हमारे से बाबा के किसी को नैनों से बाबा दिखाई दे, बाबा का अनुभव हो, और अहंकार जो है वो देह अभिमान, देही अभिमानी हो जाए, विशेष आत्मा बन जाऊं, बेफिक्र वाशा बन जाऊं, ये हो जाएगा अहंकार। और हाँ एक रह गया तो ये भूत है भी, अगर चार चले गए और एक रह गया तो ये भूत वापस आ जाएगा, और कैसे आएगा, वो माता की तरह आएगा, राख भी नहीं लेके जानी है। हाँ तो राख अर्थात क्या, हाँ कोई भी कण अंश, अंश भी अंश मात्र भी नहीं हमारे अंदर रहे वो चीजें, तो बाबा हमको कितना ऊंचा बनाना चाहते देखो, अंश हाँ किसका दिखाते हैं, रावण का दशीश विजया, बाबा ने कहा सच्ची सच्ची दशहरा मनाओ, विजयादशमी मनाओ। सबसे मशहूर दशहरा कहाँ का है, मैसूर का है, कल की मुरली में आएगा वो। सबसे मशहूर देश है मैसूर का, क्यों? राजा खुद इन्वॉल्व होता है, माना बिकारों का प्रभाव उस एरिया में ज्यादा होगा, रावण इसलिए वहां बड़ा बड़ा थे। तो ये था। और दूसरा भाव ने कहा अंतिम टुब्बी है, तो अंतिम टुब्बी में सारा कुछ इसमें पाप भसम करके जाना, साथ में लेके नहीं जाना। और नेक्स्ट था बाबा ने कुमारियों से बात की है ना, कुमारियों के भाग्य का वर्णन किया, कुमारी अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्माएं, निर्बंधन, कोई भी बंधन नहीं, कोई नौकरी टोकरी का बंधन नहीं, सदा स्वतंत्र, उड़ता पंछी, सदा समझदार, भाग्य बनाने वाली, अपना भी और औरों का भी भाग्य बनाने वाली है, विश्व कल्याणकारी है कुमारी है। और फिर सेवादारी, सेवादारी अर्थात सदा मौज में रहने, याद भी मौज हो तो सेवा भी मौज, दोनों मौज में रहने वाले, अर्थात मूंझना नहीं है। अगर मूंझ कोई मूंझता है तो आपको देखकर उसका मूंझ, उसकी मूंझ खत्म हो जाए, वो भी मौज में आ जाए, तो सेवादारी अर्थात सदा मौज में रहने वाले। और नेक्स्ट सेवादारी अर्थात सदा सफलता मूर्त, सफलता भावने का तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और जहां अधिकार होता है वहां स्वतः होता है, नेचुरल होता है, वहां मेहनत नहीं लगती है। और फिर नेक्स्ट है विदाई का, तो विदाई भावने का वियोग के दिन समाप्त होगी। तो ये थी सारी मुरली। और सफलता निश्चित कब होगी, निश्चित कब सफलता मिलेगी, जब सच्चे दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। और विदेही कब बनेंगे, परसों का स्लोगन था मन बुद्धि को कंट्रोल में रखो तो सेकंड में विदेही बनना आसान हो जाएगा। ओम शांति।